ये अयोध्या अब इसी लायक रह गई है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और राम जी महाराज उस महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सुमंत जी ने उनको आते हुए देखा, सुमंत जी ने राम जी को प्रणाम किया, सुमंत जी बड़े गंभीर थे, नमस्कार किया। कमल नेत्र राम, उन्होंने सुमंत जी से कहा, सुमंत जाकर पिता से निवेदन करो कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। सुमंत जी महाराज दशरथ जी के महल में गए और देखा कि जैसे एक सूखा तालाब होता है ऐसे दशरथ जी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सुमंत जी के कहने पर दशरथ जी ने इशारा किया, बोले नहीं, बोले कैसे? देखो पानी के अंदर कोई डूबा रहे तो बोल सकता है क्या? ऐसे ही जो शोक में डूबा हुआ है कैसे बोल सकता है? आवाज नहीं निकली। राम जी महाराज गए और जाकर के राम जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करने पर दशरथ जी महाराज ने सुमंत से कहा, सुमंत सब रनिवास को उपस्थित किया जाए, माने 350 रानियां हैं सबको बुलाया जाए। सुमंत जी ने सब रानियों को बुलाया कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। सब रानियां वहां आई, अर्ध सप्त शतास्तत्र है, अर्ध सप्त सता माने 700 का आधा, 700 का आधा तो भाई 350 होते, तो 350 स्त्रियां वहां पर आई। केवल कौशल्याम परिवार याद है, कौशल्या जी को छोड़ करके बाकी सब आए, नहीं कौशल्याम परिवार याद है, कौशल्या को चारों तरफ से घेर करके, परिवार ये माने घेर करके, और जो है कौशल्या सहित वे वहां पर आई। और उसके बाद राजा ने सुमंत जी से कहा, सुमंत ऐसा करो कि अब जो है तुम आगे वहां पर इस प्रकार से रहो कि दूसरा आ न सके, सबको आने के लिए मनाई है, तो जो है सब जो है वहां पर रोक दिए गए। अब राम लक्ष्मण और सीता तीन तो एक तरफ और माताएं एक तरफ। राम जी महाराज ने जाकर दशरथ जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया और सीता जी ने भी प्रणाम किया। इन सबको प्रणाम करते देखकर सारा रनिवास एकदम रोने लग गया। राम जी महाराज को अपने सामने देखकर महाराज दशरथ जी भी जो है बालक की तरह से वहां फूट फूट करके रोने लग गए। राम जी महाराज ने सबको धैर्य दिलाते हुए कहा कि महाराज किसी भी धर्म का पालन करने का प्रारंभ का समय थोड़ा कठिन होता है, परंतु उस धर्म का पालन हो जाने के बाद एक बड़ी शांति बड़ा सुख मिलता है। हे महाराज यदि मैं वन में नहीं जाऊं आपको उम्र भर कष्ट होता रहेगा, प्रजा में एक नई बात बनेगी, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। मैंने सीता को बहुत मना किया है पर सीता ने यहां रुकने का औचित्य नहीं समझा है, सीता भी मेरे साथ जा रही है, वो भी आपको भूयो भूय प्रणाम कर रही है, और मैं अपने अनुज लक्ष्मण को तो बहुत कारणों से रोक रहा हूं लेकिन लक्ष्मण ने भी अपनी रुकने की असमर्थता व्यक्त कर दी है, अतएव हम तीनों ही आपके चरणों में आपको प्रणाम करने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं। राम जी महाराज को राजा ने कहा, हे राम एक काम करो, तुम मेरी आज्ञा मांगते हो ना? हाँ महाराज, मैं तो केकी के वरदान में मोहित हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो राजा बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है, पागल हो जाता है, शोक में डूब जाता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, उस राजा को कैद खाने में डाल करके नए ढंग से शासन करना चाहिए, ये हमारी नीति है। तुम मुझे पागल मान लो और मुझे कैद खाने में डाल दो और तुम यही रुक जाओ। राम जी ने कहा कि महाराज ये आप क्या बात करते हैं, आप हजारों वर्षों तक यहां शासन कीजिए, मैं तो 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष के बाद आपके वन में याद आज्ञा का पालन करने के बाद आ ही जाऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा, इतनी बड़ी कौन सी विपत्ति की बात आ गई। अब दशरथ जी महाराज वहां रोने लगे, राम जी भी उनको रोते देख रोने लग गए, सारा रनिवास रोने लग गया। केकई उस समय में देख रही है सबको, तो फिर कहा अच्छी बात ठीक है राम, गच्छस्व जाओ। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा न आए, स्वस्थ्यस्तु, तुम्हारा कल्याण हो और सब प्रकार से तुम ठीक रहो। एक काम करो राम, आज ही तो वरदान मांगा गया है और आज ही तुम जा रहे हो, तुम आज यहां रह जाओ, कल सुबह तुम यहां से चले जाना। तुम यदि यहां से कल चले जाओगे तो इतने में हमारा शोक भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो है कल जाएंगे, अभी तो है कल जाएंगे, अभी तो है कल जाएंगे, ऐसी स्मृति में हमारा शोक का जो ये बदल उठा ये शांत हो जाएगा। और तुम अभी ये तो सब वरदान की बातें हुई, अभी अभिषेक होने वाला था, अभी तुम जा रहे हो, ये अकस्मात करने से हमारे हृदय में शोक ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए मेरी तो आपसे यही मुझे तो यही कहना है कि तुम आज यहां रह जाओ, कल आप चले जाना। राम जी महाराज ने कहा कि आज मुझे जो लाभ होने वाला है, प्राप्स्यामि यान अद्य गुणान कोन स्वस्थान प्रदास्यति, आज जाने का जो लाभ है वो महाराज कल कौन प्रदान करेगा। लोग कहेंगे कि राम दशरथ का बेटा था, दशरथ का बेटा कि दशरथ ने कहा रवाना हो गया, इसमें आपकी महिमा ज्यादा होगी, क्योंकि पुत्र के अंदर कोई भी गुण होता है उसका असर माँ बाप के ऊपर जाता है। आपकी महिमा होगी, मेरी भी महिमा होगी, तो आपके पीछे मेरी भी हो जाएगी। लेकिन यदि आज मैं रुक गया तो कहेंगे कि आखिर भाई दशरथ को अपना पुत्र प्रेम भाया है और राम को भी आखिर कोई न कोई यहाँ अयोध्या से बड़ा मोह था। हे महाराज, जैसे अभिषेक की बात सुनने के बाद आपने कहा कि कल अभिषेक होगा, अभिषेक में बाधा पड़ गई, ऐसे ही राम तुम आज यहाँ रहो, कल तुम चले जाना, ये कल के बीच में तो फिर भी कोई बाधा आ सकती है। नहीं महाराज, आपके वचनों को मैं पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि केकी माता ने आपके प्राण बचाए हैं। आप केकी माता के उस उपकार को याद कीजिए और आपने केकी माता को दो वरदान दिए हैं। यदि आप मरने से पहले दो वरदान पूरे नहीं किए होते तो आपको फिर दोबारा केकी के साथ में जन्म लेना पड़ता और आपकी मुक्ति नहीं होती। और यदि मैं आपके दोनों वरदान यदि यहाँ पूरा कर रहा हूँ, अब आपका तो कल्याण होगा, आपकी बात सिद्ध हो गई महाराज, इसलिए आप मुझे मत रोकिए। दूसरी बात है, मेरे मन में राज्य की कोई इच्छा भी तो नहीं है। राज्य की इच्छा हो तो आप रोकने की बात भी करो, और रुक भी जाऊंगा तो क्या क्या होगा, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैं आ ही जाऊंगा। संतापोयम विमुच्यताम, आप अपना संताप छोड़ दीजिए और ये राष्ट्र, ये नगर और ये सारी पृथ्वी आप भरत को दीजिए। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए वन में जा रहा हूँ और भरत आपके यहाँ रहेंगे, अब दोनों भाई आपके दोनों आज्ञा का पालन कर लेंगे। इसलिए महाराज आप किसी प्रकार से खिन्नता मत लाइए और दिए हुए आदेश में आप इसको वापस किसी प्रकार से संकोच में मत लाइए। राम जी महाराज ने प्रणाम किया, दशरथ जी महाराज ने उनको जो है छाती से लगाया। बेटा तुम यहाँ हो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हारे जाने की बात सुनता हूँ बड़ा कष्ट होता है। इतने में ही सुमंत जी महाराज वहां तो खड़े ही थे, सुमंत जी को एकदम मूर्छा आ गई, बेहोश से हो गए। फिर वे अपना सिर वगैरह ठीक करके लंबी सांस वगैरह लेकर के दांत कटकटाते हुए सबके बीच में उन्होंने केकी से कहना प्रारंभ किया। उस समय सुमंत जी महाराज कांप रहे थे, केकी के सामने बड़े मर्म भेदी वचन कहे, हे केकी महारानी, आपका दशरथ जी ने त्याग किया है, आपके इस त्याग को आपको याद रखना चाहिए कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है। आपने एक तरह से पति की भावना को चोट पहुंचाई है, आप पति की हत्या करने वाली हो, आप कुल का नाश करने वाली हो। आप अभी भी नहीं संभल रही हो, महाराज को कितना कष्ट हो रहा है, और मैं नीचे से आया हूँ प्रजा से, प्रजा को देखकर आप इस प्रजा के दुख को देखिए। राम के वन गमन से किसी प्रकार से एक भी नागरिक प्रसन्न नहीं है, इतने करोड़ों करोड़ों लोगों को तुम जो है कष्ट दे रही हो, क्या होगा, क्या लाभ होगा, ये अयोध्या का राज्य यूं ही रह जाएगा, हम सब राम के साथ में जाएंगे, हमने विचार कर लिया है, अयोध्या में केवल तुम रहना और दूसरा कोई रहने वाला नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भरत भी तुम्हारे यहाँ रहने वाला नहीं है, हम भी जाएंगे, महाराज भी हमारे साथ जाएंगे और गुरुजन भी साथ में जाएंगे, हम सब अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तुम और भरत नहीं, भरत भी नहीं रहेगा, तुम एक अकेले यहाँ पर रहना, क्या विचार तुम्हारा। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं कैके के ऊपर कोई असर नहीं, कैके बैठिए निर्लज्ज होकर, और कोई मन में बात है तो और सुना दीजिए, कुछ मन की आप भी भाप निकाल दीजिए, अरे कुल कलंक नहीं, अरे नीम से कभी आम पैदा होता है, तेरे वंश को मैं जानता हूँ, तेरे वंश में तू कैसी माँ की बेटी है जानता हूँ, एक बार की बात है तेरे पिता एक साधु के पास गए थे, उस साधु ने पक्षियों की आवाज की विद्या जानने की बात तेरे बाप को बताई थी, एक बार की बात है महल के ऊपर पलंग के ऊपर सोए हुए तुम्हारे बाप ने पक्षियों की बात सुन ली, और सुनने के बाद वो राजा तुम्हारे बाप जोर से ठहाका मार के हंसने लगे, तो तुम्हारी माँ भी वही थी, तुम्हारी माँ ने पूछा महाराज क्यों हंसे, कहा कि यही हंस दिया, यही नहीं है, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, बताओ क्या कारण है, कहना ही नहीं तुम्हारे लिए नहीं हंसाऊ, पक्षियों की बातें सुनकर के हंसाऊ, पक्षियों की बात क्या है मुझे सुनाओ, कि नहीं सुनाता इनकी बात, मैं नहीं सुनाता, नहीं सुनाते, हाँ नहीं सुनाता, क्यों, यदि मैं इनकी बात सुना दूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, क्या तुम मेरी मौत चाहती हो, हाँ हाँ भले ही मर जाओ, आप भले ही मर जाओ लेकिन इनकी क्या बात है मुझे सुनाओ, नहीं तो इसका मतलब है कि आप मेरे लिए हंस रहे थे, देखो तुम्हारे लिए नहीं हंस रहा था, इस बात पर तुमको विश्वास करना चाहिए, और इन पक्षियों की बात से सुन रहा था, ये बात मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मर जाऊंगा, तो मरो चाहे ठहरो हमें मतलब नहीं है, आपको सुनाना पड़ेगा। तो राजा को ये बात तुम्हारी माँ की अच्छी नहीं लगी, वो राजा दोबारा साधु के पास में गए और साधु से जाकर कहा कि महाराज मेरी रानी तो इस प्रकार से जिद कर रही है कि तुम भले ही मर जाओ, तो कहा नहीं नहीं उसको देश निकाला दे दो, यदि वो इतना जिद करती है उसको देश निकाला दे दो, लेकिन उसको बात कभी मत सुनाना नहीं तो वो जो है तुम मर जाओगे। राजा को हिम्मत आ गई, तुम्हारे बाप ने आकर तुम्हारी माँ से कहा कि मुझे साधु ने मना कर दिया मैं नहीं सुनाऊंगा, और ये पड़ा ये रास्ता, तुम या तो तुम निकल जाओ नहीं तो हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे, तो तुम्हारी माँ वहां से निकल गई लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी, ऐसी जिद्दनी माँ की तुम बेटी हो, इसलिए दुनिया में ये बात कही जाती है कि भाई बेटा तो बाप पर, ऐसी माँ की बेटी हो ना तुम, केकी स्तब्ध रह गई, केकी ने देखा कि सुमंत जी ने कहां की जड़ की बात पकड़ी है, केकी ने देखा कि यहां तो मेरी राम के साथ सेना तैयार करो, राम के साथ खजाना भेजो, राम के साथ बड़ियों को भेजो, राम के साथ ब्राह्मणों को भेजो, राम के साथ रसोइयों को भेजो, राम के साथ आकाश उड़ने वाले जो और जो ऐसे पाले हुए पक्षी उनको भेजो, राम के साथ सब प्रकार की सामग्री रहे, राम जहां जाए वहां अयोध्या 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 दिखे, ऐसा कहा कि महाराज हमने आपसे कहा था कि राम तपस्वी वेश में जाएगा, आपने यदि सारा खजाना राम के साथ भेज दिया और सेना राम के साथ भेज दी तो यहाँ भरत क्या करेगा, तो सुमन जी ने कहा कि भरत यहाँ खाक खाने का, तुम किस प्रकार से बात बोलते हो, अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहो, महाराज की बात का पालन होगा। तो कोई कोई को दुगना क्रोध आया कि कहने लगे कि महाराज आपके यहाँ पर असमंजस को देश निकाला दिया था, उस देश निकाले के अंदर असमंजस को क्या सेना दी थी, क्या धन दिया था, उसको देश निकाला दिया तो उसके साथ कुछ कोई भी व्यक्ति नहीं था, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं तो इनकी मर्जी है, राम तो अकेला जाना चाहिए, सेना नहीं जा सकती। तो भाई वहां पर एक सिद्धार्थ असमंजस ने बच्चों को उठा उठा कर कुएं में फेंक दिया, असमंजस ने लोगों के घरों में आग लगा दी, असमंजस ने बड़ा यहाँ पर कष्ट दिया, इस कारण से असमंजस को देश निकाला दिया था। राम ने किसको कष्ट दिया है, के कही किसी भी बात का उदाहरण दे तो सोच समझ करके दे, बहुत हो गया, हम अयोध्या वासी तुम्हारा बहुत ये अन्याय सह चुके हैं, अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, खड़े हो गए। और राम को कहा राम हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। राम जी महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा इस प्रकार मेरी माता को भर्सित मत कीजिए, सुमन जी मैं इस माँ के चरणों में कई बार प्रणाम नहीं रोज प्रणाम करता हूँ, अभी भी प्रणाम करता हूँ। आप लाओ हमको कोई तपस्वी वस्त्र यदि है तो दो, हम आपके सामने यहाँ तपस्वी वेश में जाते ताकि आपको विश्वास नहीं। ये लाए कहके के लाकर एक तो राम जी को दे दिया, एक लक्ष्मण जी को दे दिया, एक सीता को दे दिया। राम जी ने तो फट अपने कपड़े उतार करके पहन लिए, लक्ष्मण जी ने भी पहन लिए, सीता जी बेचारी कभी पहनी हुई नहीं थी। सीता जी अपना वो वस्त्र लेवे और वस्त्र लेकर के चारों तरफ लपेट देवे, अब इसको कैसे गांठ लगावे पता नहीं, देखो यू कपड़ा लेकर के लेकर यहाँ गांठ लगा लिया करते हैं। अब वो सीता जी बेचारी जानती नहीं। सीता जी ने पति की ओर देखा, पति ने कहा लाओ लाओ हम पहना दें। तो सीता जी को राम जी ने यू कपड़ा, एक कपड़ा तो यूं करके उसके ऊपर एक कपड़ा यूं करके और पीछे यहाँ यूं गर्दन के पीछे यहाँ गांठ लगाने लगे। तो भाई वहां पर वशिष्ठ जी महाराज थे, वशिष्ठ जी महाराज से रहा नहीं गया। वशिष्ठ जी महाराज ने फटकारते हुए कहा क्या तुम इतना बड़ा अन्याय करने जा रही हो, तुमने एक राम को तपस्वी वेश में जाने के लिए कहा है, सीता के लिए नहीं कहा है। सीता इस तपस्वी वेश में जाएगी तो अयोध्या की राजलक्ष्मी का क्या होगा, राजलक्ष्मी पैसा नहीं होता, राजलक्ष्मी स्त्री है, स्त्री राजलक्ष्मी होती है, आपको जरा उसे विचार नहीं आया। ओ वशिष्ठ जी महाराज रोने लगते हैं, तुम करते क्या हो, तो हम एका सारी दुर्वृत्ता सारी अयोध्या को सबने तुमने एक ने बिगाड़ दिया, जैसे एक मछली सारे पानी को गंदा करती है, इस प्रकार से तुमने सबको दुख देकर के सबके मन में कष्ट पैदा किया है। मैं भी राम के साथ जाऊंगा, मेरा पुत्र भी राम के साथ जाएगा, हम सब राम के साथ जाएंगे, ऐसी अयोध्या में हमारे रहने का मन नहीं करता। राम जी ने देखा कि अरे यहां तो सब चिड़े हुए बैठे हैं। राम जी महाराज ने सर्वोधिक त्वाम दशरम तुति, इधर लोगों की आवाजें आ रही थी बाहर से, राजा दशरथ को धिक्कार है, एक केके के कहने से उन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया, धिक्कार है, झूठ बोलने वाले दशरथ को धिक्कार है, क्योंकि कल उन्होंने प्रतिज्ञा की, कल उन्होंने हमको सूचना दी कि राम का अभिषेक होगा, आज राम जी की तैयारी हो रही है, दशरथ को धिक्कार है, केके को धिक्कार है। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो केके क्या हो रहा है, प्रजा में क्या बात हो रही है, सुन लीजिए तुम, केके को कोई शर्म नहीं है। केके ने कहा कि लोग तो बात कहेंगे लेकिन मैंने तो मेरा वरदान मांगा है, मेरे वरदान में कोई त्रुटि हो तो बताओ, मेरे वरदान में कोई त्रुटि नहीं है। तो सीता बिल्कुल, फिर जो है दशरथ जी महाराज ने कहा के कई अब हमको कुछ कहना पड़ेगा। सीता सर्व आभूषणों से सुसंपन्न होकर जाएगी। लक्ष्मण तुम सीता के सारे आभूषण अपने पिटारी में रखो, साथ में लेके जाओ। सीता के जिस दिन के जो आभूषण हुआ करते हैं वो आभूषण साथ में रहेंगे। इस प्रकार से सब जो है आभूषणों को साथ में लेने की उन्होंने आज्ञा दे दी और सीता जी को सीता के रूप में ही रहने के लिए कहा। किसी प्रकार से ये तापसी वेश में नहीं रहेगी, ऐसी बात कह दी गई। उसके बाद केकी का मुंह थोड़ा नीचा हो गया। राम जी महाराज ने फिर पिताजी से कहा कि पिताजी, कौशल्या जी ने, मेरी माँ ने अपने जीवन में कभी सुख के दिन नहीं देखे, इसलिए अब आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे शोक में डूबे रहने वाली कौशल्या को आप स्वीकार करें और आप इसको सब प्रकार से प्रसन्न रखें। राम जी महाराज ने इस प्रकार से प्रार्थना की और उसके बाद राम जी महाराज फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। वे जाने के लिए तैयार हुए, बार बार राम राम ऐसा बोले और जो है राम जी महाराज को उन्होंने छाती से लगाया, लेकिन उनके आंसू रुके नहीं। सुमंत से कहा, सुमंत क्या ओपवायम रथम युक्त्वा त्वाम आया ही रहोत्तमय प्राप येनम महाभागम इतो जनपदात परम। सुमंत एक बात करो, राम को थोड़ी देर जंगल में घुरा घुमा फिरा करके वापिस अपने आ ले आओ। इसकी बात भी हो जाएगी कि मैं आज निकल गया, वापिस ले आओगे तो हमारा जीवित जमा रहेगा। सुमंत कुछ नहीं बोले, सुमंत जी ने भी प्रणाम किया। राम जी महाराज अब जो है सुमंत जी के साथ साथ लक्ष्मण और सीता को साथ में लिए हुए वहां बहुत चमकीला रथ था, उस रथ में जाकर बैठ गए। खूब उन्होंने पहले जो है अपना कोष तो लुटा ही दिया था, अब जो है वो जाकर के जब रथ में बैठ गए तो अब रथ में बैठ गए तो भाई लोग सब के सब रथ के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हुए। लोग चिल्लाने लगे कि भाग्य है लक्ष्मण तुम्हारा, भाग्य है तुमने आज अयोध्या को छोड़ दिया, बड़ा अच्छा किया। सीते तुम पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो, तुमने बड़ा अच्छा किया। स्त्रीणाम गृह्णाति हृदयम अनित्य हृदयाहिता साध्वीनाम तु स्थितानाम तु शीले सत्ये सुते स्थिते। सुना है कि पति के स्त्री के पास में कोई विद्या नहीं होती, स्त्री के पास में कोई धन नहीं होता, स्त्री के पास में कोई किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं, साधना नहीं, केवल एक पतिव्रता का जो धर्म होता है उसके कारण से स्त्री बड़ी महान हो जाती है। सीता तुमने वो स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से लोग रथ में लूब रहे हैं, कोई आगे आ जाते हैं, कोई पीछे आ जाते हैं, कोई लटूम रहे हैं, कोई जो है उस समय में रो रहे हैं। क्या बताएं, उस समय देखने की दशा बड़ी विचित्र थी। दशरथ जी महाराज भी भाई देखा कि राम का रथ रवाना हो रहा है, वो कौशल्या से कहा, कौशल्या मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौशल्या जी ने हाथ पकड़ा, दूसरी रानियों ने हाथ पकड़ा, सुमित्रा ने हाथ पकड़े और वो जल्दीबाजी करने लगे कि नहीं महाराज आपका शरीर ठीक नहीं है, आप धीरे धीरे चलिए, अरे जितने राम चला जाएगा। उधर लोगों ने राम जी के रथ को इस प्रकार से घेर लिया कि जलने की जगह बहुत कम रही, धीरे 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 रथ जाए। इधर महाराज महल से नीचे उतरे और जो है नीचे उतर करके जो है रथ के पीछे पीछे गए। रथ के पीछे गए तो भाई रथ को देख करके सुमंत रथ को ठहराओ, रथ को ठहराओ। और इधर राम जी ने कहा पीछे मुड़ करके, सुमंत रथ को जितना जल्दी यहाँ से दूर ले जाओ उतना जल्दी ले जाओ। हे मुखम द्रक्षा में रामस्य, ठहरो ठहरो, मैं एक बार राम का और मुख देखना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कि सुमंत जी आप जितना जल्दी ले चलिए, ये एक एक बार करते करते विलंब हो जाएगा। देखो महाराज आप जल्दी ले चलिए, यदि आपको महाराज किसी प्रकार से आने पर उपालंब देवे कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, तो आप उनको इतनी बात बोल देना कि उस कोलाहल में हमको पूरी बात का कुछ पता नहीं चला। इधर कौशल्या भी जोर से कहने लगी, राम ठहरो राम ठहरो। अब कौशल्या भी चपट रही है, दशरथ जी भी इस प्रकार से कर रहे हैं, और वो जो है रथ आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। राम जी के रथ को दशरथ जी कौशल्या दोनों अवाक दृष्टि से देख रहे हैं, और देखते देखते भाई वो रथ बहुत दूर चला गया। दशरथ जी महाराज और कौशल्या ये सब वापस लौट करके अब कौशल्या के महल की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के उस प्रसंग से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं, जब भगवान दशरथ जी के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या के महलों को छोड़कर अयोध्या नगरी से बाहर पहुंच गए हैं। बड़ी विचित्र ये भगवान की लीला है, और अयोध्या कांड की लीला तो मानो सारे राम कथा का जड़ है, मूल है, सार है। अयोध्या कांड नहीं होता तो राम कथा का कोई स्वरूप ही नहीं होता। केकई नहीं होती तो राम जी के चरित्र का निखार कैसे होता है? जिस प्रकार बर्तन को साफ किया जाता है, मांजा जाता है, तो उस बर्तन का असली रूप सामने आता है। इसी प्रकार से राम कथा का परिमार्जन अयोध्या कांड में हुआ है, और उस अयोध्या कांड में एक एक पात्र की राम भक्ति बड़े विचित्र ढंग से वाल्मीकि जी महाराज ने बताई है। दशरथ जी महाराज का चित्रण जिस ढंग से किया गया है, उससे संसार में भोगासक्त प्राणियों को एक बड़ा सहारा मिलता है कि हमारी यदि संसार में कहीं आसक्ति रह भी जाए तो भी भगवान की भक्ति की मात्रा यदि ज्यादा हो गई तो संसार की आसक्ति कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकते। दशरथ जी महाराज ने राम जी को युवराज पद पर घोषित कर दिया, और कैकेयी ने वरदान मांग लिया। दशरथ जी महाराज ने वरदान दे दिया, परंतु अपनी राम की भक्ति नहीं छोड़ी। ये दशरथ जी में सबसे बड़ी बात थी, कैकेयी का त्याग कर दिया परंतु राम की भक्ति का त्याग नहीं किया। यदि स्त्री लोभी होते, स्त्रियासक्त होते दशरथ जी महाराज, तो वे राम के वियोग में अपने प्राण नहीं त्यागते, क्योंकि उनके मन में स्त्री के प्रेम की अपेक्षा राम के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। लोगों के मन में एक भावना रहती है कि हमारी संसार में आसक्ति बहुत ज्यादा है, परंतु यदि हमारी भक्ति की मात्रा ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कहे कि संसार की आसक्ति रहते हुए भगवान में भक्ति हो सकती है क्या? कि दशरथ जी की हुई है ना। भगवान की भक्ति न हो आसक्ति के रहते हुए ऐसा है नहीं। ऐसी भावना उन लोगों के लिए है जो भगवान को नहीं मानते। उन लोगों के लिए तो है कि जो भगवान को मानते ही नहीं, जिनको भक्ति की जरूरत नहीं, जिनको कल्याण की इच्छा ही नहीं है, उन लोगों के लिए बात लागू पड़ती है कि भाई संसार की आसक्ति के रहते हुए कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। पर जो भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है उस व्यक्ति को दशरथ जी के चरित्र से बड़ा बल मिलता है। तो कल की कथा में आपने सुना कि कैकेयी का और दशरथ जी का कैसा बेजोड़ संवाद था। देखो वाल्मीकि रामायण में एक बहुत विचित्र बात मिलेगी कि यहाँ जिसके मन में जो बात आती है वो स्पष्ट साफ कह देता है। वाल्मीकि जी ने किसी भी भाव को छिपा कर नहीं रखा। कोई वाल्मीकि रामायण पढ़े और सोचे कि यदि आज मैं लक्ष्मण होता तो ये बात बोलता तो लक्ष्मण के मुख से वही बात निकलवाई, मैं यदि सुमंत होता तो ये बात तो कहता है कि वो बात भी कह दी, मैं दशरथ होता तो ये बात करता वो बात भी इसमें मिल। माने जिस पात्र के भाव में आप स्थित होकर जो कहना चाहते हो सब बात इसमें मिलेगी। तो ये महाकाव्य आदि काव्य है।